सुंदरलाल बहुगुणा भारत के सबसे प्रसिद्ध और शुरुआती पर्यावरणविदों में से एक हैं। वो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के नेता थे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा हिमालय में जंगलों के संरक्षण के लिए संघर्ष करते हुए बिताया है। पेड़ों को गले लगाकर उनकी रक्षा करने और इन पेड़ों को काटने न देने के लिए गढ़वाल के रेनी गाँव में जो आंदोलन शुरू किया गया उसे चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन तेजी से समुदायों और मीडिया में फैल गया और सरकार को, जिसका जंगल है, वन उपज के नाम पर अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। स्थानीय लोगों की भागीदारी के कारण वनों का कुशल प्रबंधन हुआ। 1970 के दशक में शुरू हुआ चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पेड़ों और जंगलों को नष्ट होने से बचाना था। चिपको क्षण का नाम आलीगन शब्द से उत्पन्न हुआ क्योंकि ग्रामीण पेड़ों को गले लगाते थे और उन्हें लकड़ी काटने वालों से बचाते थे। 1731 में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने अपने एक मंत्री से नया महल बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने को कहा। मंत्री और कार्यकर्ता पेड़ों को काटने के लिए बिश्नोई लोगों के निवास वाले एक गांव के पास जंगल में गए। एक बिश्नोई महिला अमृता देवी ने एक पेड़ को गले लगाकर और राजा के आदमियों को पेड़ काटने से पहले उसे काटने का साहस करके अनुकरणीय साहस दिखाया। पेड़ उसके लिए उसकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा मायने रखता था। अफसोस की बात है कि राजा के लोगों ने उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और अमृता देवी सहित पेड़ को काट दिया। उनकी तीन बेटियों और सैकड़ों अन्य बिश्नोइयों ने उनका अनुसरण किया हो रह इस तरह पेड़ों को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। इस घटना ने कई अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित किया जिन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के आंदोलन शुरू किए। चिपको आंदोलन को एक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गति मिली जिन्होंने अपना पूरा जीवन सरकार द्वारा जंगलों और हिमालय पर्वतों के विनाश के विरोध में ग्रामीणों को समझाने और शिक्षित करने में बिताया। चिपको विरोध प्रदर्शन ने 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश से राज्य के हिमालयी जंगलों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के प्रतिबंध के साथ एक बड़ी जीत हासिल की। भोजन, चारा, ईंधन, फाइबर और उर्वरक, फूड फॉडर फ्यूल फाइबर एंड फर्टिलाइजर आत्मनिर्भर समाज के लिए आवश्यक चिपको आंदोलन के 5F है। 1964 में पर्यावरणविद और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीणों के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी संगठन दशौली ग्राम स्वराज्य संघ, बाद में इसका नाम बदलकर दशौली ग्राम स्वराज्य मंडल DGSM की स्थापना की। जब औद्योगिक कटाई को 1970 में क्षेत्र में 200 से अधिक लोगों की जान लेने वाली भीषण मानसूनी बाढ़ से जोड़ा गया तो DGSM बड़े पैमाने के उद्योग के खिलाफ विरोध की ताकत बन गया। पहला चिपको विरोध अप्रैल 1973 में ऊपरी अलकनंदा घाटी में मंडल गांव के पास हुआ था। ग्रामीणों को कृषि उपकरण बनाने के लिए कम संख्या में पेड़ों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था। जब सरकार ने बहुत बड़ा भूखंड आवंटित किया तो वे नाराज हो गए। एक खेल सामान निर्माता, जब उनकी अपीलें अस्वीकार कर दी गयी तो चंडी प्रसाद भट्ट ग्रामीणों को जंगल में ले गए और कटाई को रोकने के लिए पेड़ों को पकड़ लिया। कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने कंपनी का लॉगिंग परमिट रद्द कर दिया और DGSM द्वारा अनुरोधित मूल आवंटन प्रदान कर दिया। मंडल में सफलता के साथ DGSM कार्यकर्ताओं और स्थानीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको की रणनीति को पूरे क्षेत्र के अन्य गांवों के लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। अगला बड़ा विरोध प्रदर्शन 1974 में रेनी गांव के पास हुआ जहां 2000 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था। छात्रों के नेतृत्व में एक बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार ने मुआवजे के लिए आसपास के गांवों के लोगों को पास के शहर में बुलाया ताकि लकड़हारे को बिना किसी टकराव के आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। हालांकि उनकी मुलाकात गौरा देवी के नेतृत्व में गांव की महिलाओं से हुई जिन्होंने जंगल से बाहर जाने से इनकार कर दिया और अंततः लकड़हारे को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। रेनी में कार्रवाई ने राज्य सरकार को अलकनंदा घाटी में वनों की कटाई की जांच के लिए एक समिति स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और अंततः क्षेत्र में वाणिज्यिक कटाई पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार चिपको आंदोलन वन अधिकारों के लिए किसानों और महिलाओं के आंदोलन के रूप में उभरना शुरू हुआ। हालांकि विभिन्न विरोध प्रदर्शन काफी हद तक विकेंद्रीकृत और स्वायत्त थे। विशिष्ट पेड़ को गले लगाने के अलावा चिपको प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी की सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा पर आधारित कई अन्य तकनीकों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए बहुगुणा ने वन नीति के विरोध में 1974 में 2 सप्ताह का प्रसिद्ध उपवास किया था। 1978 में टिहरी गढ़वाल जिले के अडवाणी जंगल में चिपको कार्यकर्ता धूम सिंह नेगी ने जंगल की नीलामी के विरोध में उपवास किया, जबकि स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों के चारों ओर पवित्र धागे बांधे और भगवद्गीता का पाठ किया। अन्य क्षेत्रों में चीर पाइन्स, पीनस रॉक्स बगी, जिन्हें राल के लिए उपयोग किया गया था, उनके शोषण का विरोध करने के लिए पट्टी बांध दी गई थी। 1978 में भयूदार घाटी के पुलना गांव में महिलाओं ने लकड़हारे के औजार जब्त कर लिए और जंगल से हटने पर दावा करने के लिए रसीदें छोड़ दी। ऐसा अनुमान है कि 1972 और 1979 के बीच 150 से अधिक गांव चिपको आंदोलन में शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड में 12 बड़े विरोध प्रदर्शन और कई छोटे टकराव हुए। आंदोलन को बड़ी सफलता 1980 में मिली, जब बहुगुणा की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अपील के परिणामस्वरूप उत्तराखंड हिमालय में व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। हिमाचल प्रदेश और पूर्व उत्तरांचल में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। स्थायी प्रभाव, जैसे जैसे आंदोलन जारी रहा, विरोध अधिक परियोजना उन्मुख हो गया और क्षेत्र की संपूर्ण पारिस्थितिकी को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ, जो अंततः हिमालय बचाओ आंदोलन बन गया। 1981 और 1983 के बीच बहुगुणा ने आंदोलन को प्रमुखता देने के लिए हिमालय में 5000 किलोमीटर 3100 मील की यात्रा की। 1980 के दशक के दौरान कई विरोध प्रदर्शन भागीरथी नदी पर बने टिहरी बांध और विभिन्न खनन कार्यों पर केंद्रित थे, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम एक चूना पत्थर खदान बंद हो गई। इसी तरह बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण के प्रयास से क्षेत्र में 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। 2004 में हिमाचल प्रदेश में लॉगिंग प्रतिबंध हटाने के जवाब में चिपको विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हुआ, लेकिन इसके पुनः अधिनियमन में असफल रहे। अभ्यास एक, चिपको आंदोलन का 5F लिखे। 2, चिपको आंदोलन समझाइए। 3, चिपको आंदोलन किसने और किस वर्ष चलाया था।